निर्मायसे ते यदमोतु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलं कृषेष्ट भगवान् वचांसि मे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसोक्ताम् सञ्जीवयन्ति किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण रमण त्वदादी प्राणा नमो भगवते पुरुषाय शुभ्रम् यत्पादपल्लवैरं विनिधाय कुम्भम् द्वन्द्वे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यस्य कृपासिन्धोरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री श्याम सुंदर की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। वास्तव में भगवान जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं वही व्यक्ति भगवान के दिव्य कथा को सुनता है। भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संग मंच लभते पुरुषम लगन लगे। जब अनंत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, जब अनंत जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है, तब जीव भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, साधु के साथ बैठते हैं। इस सबके भाग्य में भागवत कथा नहीं है, ये ध्यान देना चाहिए। जो बहुत पुण्य किया है तब वह इस दिव्य कथा को सुन पाता है, चाह करके भी लोग सुन नहीं पाते हैं। लेकिन वास्तव में हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं। गुरु महाराज की कृपा है, भक्तों का कृपा है कि इस तरह का सत्संग सुनने और कहने का सौभाग्य प्राप्त है। ये सबके भाग्य में नहीं है। संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दो चीज नहीं मिलता है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतदारा यदु लक्ष्मी पाप इनके भी हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा इस संसार में अगर दुर्लभ वस्तु है तो दो वस्तु, दुर्लभ क्या है, दो चीज, वो क्या है, संत समागम हरि कथा, उनसी दुर्लभ है, तो यही दो चीज दुर्लभ है, सुख दारा और लक्ष्मी पापी के लिए हो। एक पापी व्यक्ति जो है दिन रात विषय में लगा हुआ है, जो दिन रात पाप करता है, ऐसे पापियों को भी स्त्री पुत्र धन प्राप्त हो जाता है। ये नहीं समझना चाहिए जिसके पास धन है, स्त्री है, बच्चे हैं, तो एक दिन रात विषय में लगा हुआ व्यक्ति जीव जो पाप करता रहता है उसको भी प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान के भक्तों का संग और भगवान के दिव्य कथा, ये जो बहुत पुण्य किया है, भागवत के महात्म में कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन, जो अनंत जन्मों तक पुण्य प्राप्त किया है, किसी को दान दिया है, व्रत किया है, सत्संग उसी व्यक्ति को मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वास्तव में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान के धाम में कथा सुन रहे हैं, ये सबके भाग्य में नहीं है। तो कल हम लोग कथा सुन रहे थे कि भगवान के बाल लीला है, ऐसे तो भागवत अपने आप में दिव्य ग्रंथ है, लेकिन उसमें भी जो दशम स्कंध का प्रसंग है और खास करके भगवान के बाल लीला, उसके विषय में और क्या कहा जाए। समय के अभाव में हम लोग जल्दी जल्दी भागते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि भगवान का नामकरण कराऊं। तो देखिए, कल हम लोग कथा सुन रहे थे कि भगवान श्याम सुंदर सत्कासुर का वध किए, वीणावर्त का वध किए और ब्रह्मांड का दर्शन कराए, और इधर क्या होता है कि धीरे धीरे भगवान का उम्र 100 दिन का हो गया है। 3 महीना के जब भगवान कृष्ण थे तो 70 का उद्धार किए, 90 दिन जिसको कहते हैं, लेकिन अब भगवान 100 दिन के हो चुके हैं। यहाँ कहा जाता है कि ब्राह्मण शरीर में जिसका जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है, उसका नामकरण 30 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं उनका नामकरण 30 दिन होते होते हो जाना चाहिए, लेकिन जो क्षत्रिय कुल में हैं उनका 100 दिन तक में होना चाहिए, अब उससे लेट नहीं होना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए। तो इधर भगवान 100 दिन के हो चुके हैं, लेकिन कहाँ कृष्ण है सबको पता है कि जब भगवान का जन्म हुआ था तो वसुदेव जी ले जा करके गोकुल में पहुंचा दिए थे नंद बाबा के यहाँ। तो नंद बाबा को कोई चिंता नहीं है, लेकिन इधर वसुदेव जी को चिंता है, वसुदेव जी चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा पुत्र 100 दिन का हो चुका लेकिन अभी तक नाम संस्कार नहीं हुआ, नामकरण नहीं हुआ, तो वह क्या करते हैं वसुदेव जी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गर्गह पुरोहितो राजन यदो नाम सो महातपहा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। कहते हैं कि हे राजन हे महाराज परीक्षित, जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, यदुवंशियों के कुल पुरोहित कौन हैं, गर्गाचार्य, तो गर्गाचार्य को वसुदेव जी अपने पास में बुलाए और बुला करके उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, वो गर्गाचार्य कौन है तो पुरोहित है, पुरोहित है। पुरोहित शब्द बहुत यहाँ महत्वपूर्ण है। गर्गाचार्य कौन है? गर्ग पुरोहितो, हे राजन, हे महाराज परीक्षित। वसुदेव जी क्या किए कि जो पुरोहित है उस गर्गाचार्य को अपने पास बुलाए और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनको मंद ब्रज के लिए भेज रहे। तो पुरोहित शब्द यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? पुरोहित का अर्थ है कि पुरहिता मतलब जो आगे रह करके हित करे। पुरह माने आगे और हिता मतलब हित करने वाला, रक्षा करने वाला, भलाई करने वाला, उसको पुरोहित कहते हैं। जो अपने शिष्यों के साथ या अपने यजमान से आगे आगे चल करके उसका रक्षा करे उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित आगे रहकर हित करने वाला को पुरोहित कहते हैं। तो गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पुरोहित हैं, जिसको पुरोहित कुल गुरु, वो कुल गुरु है। सभी व्यक्ति के यहाँ एक कुल गुरु होते हैं, जो कुल परंपरा से उनके यहाँ आते हैं, उनके भलाई के लिए सोचते हैं, रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव जी अब विचार कर रहे हैं, उनके मन में हो रहा है कि अपने गुरु महाराज को नंद के यहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे बालक अब 100 दिन के हो चुके हैं। इसलिए इस काल को विचार करते हुए गर्गाचार्य जी को बुला रहे हैं और बुला करके क्या करते हैं कि नंदस्य ब्रजम जगाम, नंद के ब्रज के लिए गर्गाचार्य जी को प्रचोदित है, प्रेरित करते हुए, प्रार्थना करते हुए उनको नंद ब्रज के लिए भेज रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे महाराज, आप कृपा करके नंद ब्रज में जाइए। तो मान लीजिए गर्गाचार्य जी पूछे कि मैं क्यों जाऊं, क्या काम है? तो यहाँ पर वसुदेव जी कह रहे हैं कि आप हमारे पुरोहित हैं, आप हम लोगों की रक्षा के लिए सोचते रहते हैं, भलाई के लिए सोचते हैं। तो देखिए हमारा बालक अब 100 दिन का हो चुका है, हे गुरुदेव, नंद को कोई चिंता नहीं है, आप जाइए और जा करके मेरे बालक का नामकरण कर दीजिए। उनको चिंता है कि हमारे 2 लड़के नंद जी के यहाँ हैं, एक बालक जो है 7वां गर्भ जो देवकी के गर्भ में थे, स्वयं भगवान बलराम, वह जोग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में सन्निवेशित किया गया, डाला गया था, उनका भी जन्म हुआ है, बलराम जी भी हैं। तो बलराम जी के लिए और कृष्ण के लिए वसुदेव को चिंता है, क्योंकि वे पिता हैं, पिता सदैव अपने पुत्र के भलाई के लिए सोचते रहते हैं। वसुदेव जी अपने आचार्य गर्गाचार्य जी को बुला करके और उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप नंद ब्रज में जाइए, नंद गांव के लिए प्रस्थान कीजिए, गोकुल जाइए। तो इतना सुन करके अब गर्गाचार्य जी क्या करते हैं कि वहां से चल देते हैं। कहां से चल रहे हैं? मथुरा से चल रहे हैं और सीधे पहुंचते हैं गोकुल। और जब वहां आते हैं तो उस समय क्या होता है, सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि तम दृष्ट्वा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनल साधो कृपात पुरासरम। तम दृष्टवा तम दिव वचन के द्वितीय के एक वचन है सहतौते तम। तम मतलब उस गर्गाचार्य को दृष्टवा प्राप्त है, दृष्टवा मतलब देखकर। तम दृष्टवा उनको देख करके, किसको देख करके? गर्गाचार्य को। गर्गाचार्य को देख रहे हैं कौन? देख रहे हैं तो नंद जी, जो नंद जी हैं, नंद जी देखे गर्गाचार्य को। तम दृष्टवा परम प्रीत, ध्यान दीजिएगा गृहस्थ को कैसे होना चाहिए। नंद बाबा यहाँ हम गृहस्थों को शिक्षा दे रहे हैं कि गृहस्थ के यहाँ अगर कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण, कोई संत साधु आवे तो क्या करना चाहिए। एक गृहस्थ का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इससे सिद्ध होता है कि जब गर्गाचार्य गए थे तो उस समय नंद बाबा बैठे हुए अपने घर में, अपने महल में बैठे हुए हैं, लेकिन जब देखे कि गर्गाचार्य आ रहे हैं, तम मतलब उस गर्गाचार्य को दृष्टवा देख करके परम प्रीत बहुत प्रसन्न हुए। आजकल के लोग क्या करते हैं, किसी साधु को देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया, कहीं कुछ मांग न ले। आजकल के लोगों की यही स्थिति है, लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं है। नंद बाबा बहुत खुश हुए, परम प्रीत, प्रीत मतलब प्रसन्न और परम मतलब बहुत ज्यादा। परम शब्द लग करके उनकी प्रसन्नता को बहुत ज्यादा बोध करा रहा है। परम प्रीत बहुत प्रसन्न हुए, और इसके बाद प्रसन्न ही नहीं हुए, प्रत्युत्थाय कृतांजलि, प्रत्युत्थाय तुरंत प्रति उत्तर गया, वो तुरंत उठ गए। ये नहीं कि आ रहे हैं गर्गाचार्य में आइए 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 बैठिए बैठिए। कुछ लोग होते हैं जो अपनी कुर्सी पर बैठे तो उठना नहीं चाहते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुर्सी बहुत खतरनाक होता है, कोई छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जो संत होते हैं वो छोड़ देते हैं। जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं कि इसको छोड़ना नहीं चाहते। आइए आइए बैठिए बैठिए ऐसे करते हैं, लेकिन नहीं। अगर कोई अतिथि, कोई संत, कोई ब्राह्मण अपने पास आ जाए तो क्या करना चाहिए, नंद बाबा से हम लोगों को सीखना है। भागवत में यही सब बताया गया है ना, क्या करना है। नंद बाबा क्या करते हैं कि प्रत्युत्थाय तुरंत उठ गए, और उठ करके खड़े हो गए, और खड़े होकर के कृतांजलि हुई, कृत अंजलि अपने दोनों हाथों को जोड़ लिए। इस प्रकार हाथ जोड़ते हुए कृतांजलि, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में, उस गर्गाचार्य के चरणों में प्रणाम किए। नंद बाबा प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरण का स्पर्श कर रहे हैं, चरण छोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करके वे स्वयं, उनके मन में जो भाव हो रहा है, भान हो रहा है कि मेरे घर में स्वयं भगवान ही आ गए हैं। उनके मन में भाव है कि मेरे घर में स्वयं भगवान उपस्थित हो गए, भगवान आ गए। इस भाव से उनका पूजा करने लगे। आनर का अधोक्षर दिया प्रणी पातः पुरः शरम। भगवत बुद्धि से आनर्च मतलब पूजा करने लगे। इस भाव से यह भगवान अधोक्षर ही हमारे घर पर आ गए। जो अतिथि होते हैं, अतिथि को कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, जिनका कोई तिथि न हो, ऐसे अतिथि आ जाए तो उनको भगवान जैसा पूजा करने चाहिए। आजकल के तो लोग आने से पहले ही फोन कर देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो उसको अतिथि नहीं कहा जाता है, वो अतिथि नहीं है। अतिथि का अर्थ हुआ अतिथि अमान्य न तत्पुरुष समाज से अ बना है, नकार का लोप हो गया है और इसमें केवल अ बचा हुआ है। अमान्य नहीं, तिथि मतलब डेट तारीख, जिनका तिथि मालूम न हो उसको अतिथि कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति कोई आ जाए उसको भगवान जैसा पूजा करनी चाहिए, भगवान जैसा पूजा करने का महत्व है और फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अधोक्षज बुद्धि से, भगवत बुद्धि से वे उनका पूजा किए, इसका पूजा कर रहे हैं गर्गाचार्य जी, चरणों में पूजा कर रहे हैं। पूजा करते हुए बहुत विधि विधान से आनंद में होकर के भगवान के विषय में वह जानते हैं कि भगवत भक्तों का सेवा किस तरह करना चाहिए। तो वे आनंद में होकर के देखिए, अगर भगवान का कृपा प्राप्त करना है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुरु के चरणों में सेवा करना है, भगवान के भक्तों के चरणों में सेवा करना है। गुरु कृपा से और वैदिक ग्रंथों से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। अगर कोई सोचे कि हम गुरु के चरणों में सेवा न करें, वैदिक ग्रंथों का पठन पाठन न करें और भगवान को समझ जाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ नंद बाबा गर्गाचार्य के चरणों में गुरु भाव मानते हुए, गुरु के चरणों में ध्यान करते हुए और यह विचार कर रहे हैं, यह सोच रहे हैं कि मेरे घर में स्वयं भगवान ही आ गए हैं, भगवान अधोक्षज आ गए हैं, इस भाव में होकर के वे क्या किए, पूजा करने लगे। और जब पूजा करने लगे तो फिर क्या करते हैं, यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं, सोपवेशम गिरासो नृतया मुनि नंदयित्वा ब्रवेद ब्रह्मन् पूर्णस्य करवामति। कह रहे हैं कि सुनृतया अभ्यागता, अगर कोई अभ्यागत, अगर कोई अतिथि अपने घर में आ जाए तो उनसे अपने दुख को नहीं सुनाना चाहिए। अपने यहाँ कोई अतिथि आवे तो उसको दुख नहीं सुनाना चाहिए, उसको क्या सुनाना चाहिए, सुख के विषय में सुनाना चाहिए, सुख संवाद देना चाहिए और उसे मधुर बात करनी चाहिए। सुन रहे तया मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपात हो औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल। प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति जनतवा तस्मात् तदैव वक्तव्यं वचने किं दरिद्रता। अगर बोलनी ही है तो प्रिय वाक्य बोलना है। प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति जनतवा, अगर कोई प्रिय वचन बोलता है, मधुर वाणी बोलता है तो सबको वह वाणी अच्छी लगती है। अगर कोई अतिथि आ गए हैं तो आते ही अपना दुख नहीं सुनाना चाहिए, अरे मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ, नहीं, अपने दुख को बिल्कुल छिपाना चाहिए और जो दुख देने वाला बात है उसको बताना है। तो यहाँ नंद बाबा क्या करते हैं, अतिथि का सत्कार किए, सेवा किए, पूजा किए और इसके बाद वह उनका अभिनंदन किए और कहते हैं कि हे भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम है, आप बिल्कुल पूर्ण काम है, फिर भी मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। नंद बाबा कह रहे हैं कि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए क्या सेवा करूं, बताइए। यहाँ कह रहे हैं कि पूर्णस्य पूर्णस्य, नंद बाबा क्या कहते हैं कि आप पूर्ण काम हैं, आप स्वयं पूर्ण हैं, आपको किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, फिर भी बताइए आपका मैं क्या सेवा करूं। यहाँ सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं, सिद्धार्थ स्वामी जी कहते हैं कि पूर्णस्य, नंद बाबा कह रहे हैं कि वह पूर्ण काम है। तो पूर्ण काम का मतलब पूर्णम चेत कथम धनिनाम गृहम आगतम तत्राह, कह रहे हैं कि जब वह पूर्ण काम है तो फिर धनी के यहाँ क्यों पहुंचे, बताइए। कह रहे हैं कि पूर्ण चेत कथम धनिनाम गृहम आगतः तत्राह, कह रहे हैं महद विचलनम इति, क्योंकि जो महत् पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो गृहस्थों के कल्याण के लिए घूमा करते हैं, अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने इच्छा के लिए नहीं, उनका कोई कामना नहीं होता है, अपना चाह नहीं होता है। जो महत् पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, वे दूसरे के भलाई के लिए जाते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए जाते हैं। महद विचलनम नूनाम गृहिणाम दीन चेतसाम नृसे असाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित, कह रहे हैं कि महद विचलनम नूनाम, हे राजन, हे महाराज, आप जैसे महात्मा महत विचलनम, आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर जाना ही, हमारे घर आना ही परम कल्याण का कारण है, क्योंकि अपने को कह रहे कि दीन चेतसाम, दीन चेतसाम, हम गृहस्थ घर के काम धंधे में फंसे हुए हैं। दीन चेतसाम शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। नंद बाबा अपने को दीनहीन मानते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको किसी वस्तु की कामना नहीं है, क्योंकि आप पूर्णस्य काम, आप सभी कामनाओं से पूर्ण हैं, आपका कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो प्रश्न यहाँ होता है ना कि जब उनको किसी वस्तु की कामना ही नहीं है, कोई चाह ही नहीं है, तो फिर क्यों वह धनी के घर में पहुंच गए। नंद बाबा एक राजा हैं, उनके पास में धन दौलत की कमी नहीं है, ऐसे राजा के पास में, ऐसे धनी व्यक्ति के पास में गर्गाचार्य जी को जाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत पड़ा, बताइए। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कोई कामना नहीं है, आप महत्पुरुष हैं, महत् विचलनम, आप महान व्यक्ति हैं, और आपका विचलन, आपका आना एक जगह से दूसरे जगह पर आना, अपने स्थान से चलना, हम दीनहीन व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि दीन चेतसाम गृहिणाम, यहाँ कह रहे हैं कि गृहिणाम, गृहिणाम शब्द कहकर के कहते हैं कि गृहिणाम का अर्थ क्या है कि जो पकड़ करके रखे, गृहिणाम कहते हैं जो पकड़ करके रखे, न गृहम गृहणाम क्या हो गृहणीम गृह उच्चते, कहा जाए कि घर को घर नहीं कहा गया है, गृहिणी जो है वही, उसी को गृह घर कहा जाता है। कह रहे हैं कि न गृहम गृहणाम क्या हो गृहिणी गृह उच्चते, गृहिणी को ही गृह कहा जाता है, गृहिणी मतलब जो पत्नी होती है, जो स्त्री है, वही घर है। तो जो गृहिणी होती हैं, उनके साथ रहते रहते हम लोग ऐसे दीनहीन हो गए हैं कि हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो गृहस्थ होते हैं उनके पास अनेक प्रकार की काम होती है, अपने घर में फंसे हुए रहते हैं, अनेक प्रकार का काम है, जो घर गृहस्थी में है, बच्चों को पढ़ाना है, खेती बाड़ी करना है, मकान बनवाना है, सफाई करना है, तब तक कोई दूसरा आ गया, एक काम को आप अभी समेटे ही नहीं तब तक दूसरा काम उपस्थित हो गया। गृहस्थ व्यक्ति के पास में जाइए और कहिए कि चलो आप हमारे साथ भागवत करने के लिए, भागवत सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो कहता है महाराज मैं क्या बताऊं, प्रभु जी मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं क्या बताऊं, अभी बच्चों को पढ़ाना है, कुछ घर में काम है। वो नहीं निकल सकता है क्योंकि वह दिन चेतसाम, वह दिन है, अनेक प्रकार के प्रपंच में, अनेक प्रकार के घर के काम धंधों में उसका जो चित है, मन है, वह लगा हुआ है, उसका मानसिकता काम, घर के काम धंधों में फंसा हुआ है। तो घर के काम धंधों से निकल नहीं पाता है क्योंकि जो स्त्री है वो उसको पकड़ करके रखी है। वो क्या की है कि उस व्यक्ति को पकड़ रखी है। जानते हैं कहा गया है कि जो स्त्रियों के साथ में रहते हैं घर में, तो इस प्रकार पकड़े रहते हैं। देखिए एक लोहा का सिकल होता है, एक दूसरे में एक दूसरे को जोड़े रहते हैं। अगर आप छोड़ना भी चाहें, मान लीजिए आप अपने हाथ को ऐसे कर लिए हैं, तो स्त्री जो होती है, बच्चे जो होते हैं, आपको इस तरह पकड़ेंगे, आप निकल नहीं सकते हैं। कभी कभी तो जिधर चाहते भी हैं कि मैं थोड़ा सा जाऊं, सत्संग करूं, बैठूं, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं क्योंकि पुत्र का मोह, पत्नी में आसक्ति, घर की हस्ती में फंसे होने के कारण वो निकल नहीं पाते। हे भगवान, हे गुरुदेव, हे महाराज, वास्तव में आपका कोई कामना नहीं है, आप तो पूर्ण काम है, पूर्णस्य, आप बिल्कुल पूर्ण काम है, परंतु हम तीन चेतसाम व्यक्ति को उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए आपका आगमन हुआ है। निःश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्य ठाकुर जी, आपका और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। लेकिन इस बात को भगवान के दोनों पिता कह रहे हैं। भगवान कृष्ण के कितने पिता हैं? दो पिता हैं, एक नंद बाबा और दूसरे वसुदेव जी, या पहला कह लीजिए वसुदेव जी, नंद बाबा, दोनों सम हैं। यहाँ पर भागवत के दसम स्कंद के आठवां अध्याय के चौथा श्लोक में नंद बाबा कह रहे हैं। नंद बाबा बोलते हुए कहते हैं कि तीन चेतसा, आप जैसे महात्मा का आगमन हम तीन हीनों के लिए होता है, और आप एकादश स्कंद में चले जाइए, एकादश स्कंद के दूसरा अध्याय के पहला श्लोक में कहते हैं वसुदेव जी, वसुदेव जी वहां बोल रहे हैं, वसुदेव जी बोलते हुए कहते हैं कि भगवान भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम कृपाणाम यथा पित्रो उत्तम श्लोकवात्मनाम। वसुदेव जी वहां नारद जी से कह रहे हैं, वो भी भगवान के पिता हैं, कहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि भवतो यात्रा, भवतः यात्रा, हे भगवान, भगवान भवतो यात्रा, हे नारद जी, हे देवर्षि, आपका यात्रा क्या हुआ, किस लिए होता है? संसार में माता पिता का आगमन, संसार में जो माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए, और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का आगमन, जो माता पिता का आगमन होता है वो अपने पुत्रों के कल्याण के लिए होता है, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए, प्रपंच में जो उलझे हुए हैं कृपणा नाम, जो अनेक प्रकार के दिन दुखी व्यक्ति हैं, उनको बड़ा सुख देने के लिए मंगलमय होता है। जो घर गृहस्थी में फंसे हुए व्यक्ति होते हैं उनको मंगलमय करने वाला होता है। परंतु हे भगवान, हे नारद जी, आप तो स्वयं भगवतमय हैं, भगवत स्वरूप हैं, आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। वसुदेव जी बोल रहे हैं वहां पर एकादश स्कंद, वसुदेव जी कहते हैं कि भगवान भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेही नाम स्वस्थये सुअस्ति सुअस्ति का मतलब हुआ कल्याण के लिए सुमान्य सबके कल्याण के लिए अस्थि होता है स्वस्थ है। संत महात्मा जो होते हैं अपने लिए चिंता नहीं करते हैं। साधु किसको कहते हैं? जो दूसरे के लिए सोचे, जो दूसरे का भलाई करना चाहे, संत उसी को कहते हैं। संत वही होते हैं कि तितिक्षव तारुणिक सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रव शांता साधव साधु घोषणा। जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो दूसरे के कल्याण के लिए अपने शरीर को धारण करते हैं। और इसी बात को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, स्वयं भगवान राम कहते हैं। किससे? नारद जी से। नारद जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप साधु का महिमा बताइए। संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? तो कहते हैं निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहे, निज गुण सुनत श्रवण सकुचाहे, पर गुण सुनत अधिक हर साई। वह संत होते हैं, दूसरे की प्रशंसा जब सुनते हैं तो अति आनंद में हो जाते हैं, लेकिन उनकी अगर कोई प्रशंसा करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर उनकी विशेषता क्या है? भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, गावे ही सुनाई सदा मन लीला, हेतु रहित पर ही करत सीला। हे नारद, वो सदैव गाँव वही सुनाई सदा मम लीला। वो जो भक्त होते हैं, मेरे भक्त जो होते हैं, वो सदैव सदा निरंतर नित्यम मम, मम मतलब मेरे, लीला को गाते हैं और सुनते हैं। अन्य कामों में उनका मन नहीं लगता है। ये नहीं कि बस भगवान की कथा सुनने में मन नहीं है, जब करने में मन नहीं लग रहा है और फालतू बात करने में घंटों घंटा बीत रहा है। साधु का पहचान यहाँ पर है कि वो सदैव मेरे विषय में गाते हैं, मेरे विषय में सुनते हैं, मेरे विषय में बताते हैं। हेतु रहित पर ही गतिशीला, उनका कोई अपना हेतु नहीं होता है। वो पर ही दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए सदैव विचरण करते हैं, दूसरे का कल्याण चाहते हैं। यहाँ वसुदेव जी कह रहे हैं, हे भगवान, सर्वदेहिनाम स्वस्थ है, आप लोगों का जो आगमन होता है, विचरण होता है, भ्रमण होता है, वो दूसरे के कल्याण के लिए होता है, दूसरे की भलाई के लिए होता है। और यहाँ नंद बाबा भी इसी बात को कह रहे हैं गंगाचार्य जी, महद विचलनम निराम गृह राम दीन चेत साम, नहीं से साय भगवान नान्य था कल्पते क्वचि। हे प्रभो, हे भगवान, आप हम दिनहीनों के लिए आपका आगमन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ आप हमारे यहाँ पर पधारे आए। देखिए, संत को देख करके, साधु को देख करके, ब्राह्मण को देख करके इस तरह प्रसन्न होना चाहिए। तम दृष्ट्वा परमः प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि। गर्गाचार्य जी को जब नंद बाबा देखे तो प्रसन्न हुए, खड़े हुए, प्रणाम किए, उनको आसन दिए, बैठाए और इसके बाद में सुंदर प्रसाद खिलाए, सुंदर पकवान खिलाए। जानते हैं जब गर्गाचार्य जी पहुंचे थे तो नंद बाबा सबसे पहले उनको गाय का दूध, गाय के घी, गाय का दही और मधु उसको मिला करके तुरंत पहले तो पिलाए। उसको पीने से जानते हैं क्या होता है? व्यक्ति जब चल करके आता है कहीं से और उसको पिए तो उसका थकान तुरंत दूर हो जाता है, श्रम जो परिश्रम करके आया है वो तुरंत समाप्त होता है। इस बात को नंद बाबा समझ रहे हैं कि गर्गाचार्य मेहनत करके आए हैं, छल करके आए हैं, परिश्रम किए हैं, उनको ऐसा पेय पदार्थ दू जिसको पी करके उनको सुख मिले, आनंद की अनुभूति हो। स्वयं भगवत बुद्धि करते हुए, भगवान भगवत भाव करते हुए उनको सेवा कर रहे हैं और कहते हैं कि आपका आगमन केवल हम दिनहीन व्यक्तियों के लिए, जो कि हम घर गृहस्थी के काम धंधों में फंसे हुए हैं, हम यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं, ऐसे हम लोगों के कल्याण के लिए होता है। वास्तव में संत महात्मा न रहे तो जगत का कल्याण नहीं हो सकता है। हम लोग देखे हैं, बहुत जगह जाते हैं भागवत करने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, तो देखते हैं कि ऐसे ऐसे गांव है इस संसार में, इस भारत में ही ऐसे ऐसे गांव है जहाँ लोग कृष्ण को नहीं जानते, भगवान के विषय में बिल्कुल नहीं जानते हैं, और वहाँ जा करके जब बताया जाता है कि देखो भगवान कृष्ण हैं जो हम लोगों को जन्म दिए हैं, हम लोगों का पालन करते हैं, खिलाते हैं, भगवान गीता में बोले हैं कि हम सर्वस्व प्रभव मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धि भाव समन्विता, बुद्धा भाव समन्विता, जो इस भाव से मेरा भजन करता है, मैं ही सारे जगत का प्रभु हूँ। इस तरह जब बताया जाता है धीरे धीरे, तब वो समझता है अच्छा सबको खिलाने पिलाने वाले भगवान हैं। बताइए, अगर संत महात्मा नहीं होते, अगर आज प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोग यहाँ तक पहुँचते? इसलिए साधु जो होते हैं कल्याण के लिए होते हैं, गृहस्थों को कल्याण करते हैं, जीव का उद्धार करते हैं। यहाँ नंद बाबा कह रहे हैं कि आपका और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, और भगवान आप तो साक्षात ज्योतिषी, आप तो साक्षात ज्योतिषी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जो बात साधारणतः इंद्रियों को पहुंच के बाहर है, आप भूत भविष्य सबको जानने वाले हैं, आप सब कुछ जान रहे हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। ज्योतिष शास्त्र क्या है? जिसके द्वारा हम भूत को, भविष्य को और वर्तमान को समझते हैं, आप उसको रखने वाले हैं, आप उसको लिखने वाले हैं। आप कोई साधारण नहीं है, आप तो ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके एक कार्य को कीजिए। कहते हैं कौन काम? नंद बाबा देखिए, जब वसुदेव जी भेजे थे तो गर्गाचार्य जी चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कैसे उसका नामकरण करूंगा, मन में विचार किए होंगे, लेकिन गर्गाचार्य जी को कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा के भीतर हैं, अब गर्गाचार्य जी को कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, आए हैं जिस कार्य के लिए, उनको बिना कहे नंद बाबा ही अब कहना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि त्वम हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयो अनयो नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। कहते हैं प्रभु, आप ब्रह्म वेता हैं, आप ब्राह्मण वेताओं में श्रेष्ठ हैं, महान हैं। तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, जितने ब्राह्मण जन हैं जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वेद को जानने वाले हैं, भूत भविष्य को जानने वाले हैं, उन सभी में तुम ही श्रेष्ठ, आप ही श्रेष्ठ हैं। जानने वाले तो बहुत हो सकते हैं, है भी, लेकिन अगर सभी लोगों ने कहा जाए तो तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ हैं, महान हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं हाँ ठीक है, मैं महान हूँ, अब बात सही कह रहे हैं, लेकिन कहना क्या चाहते हो? प्रभु आप क्या कीजिए कि संस्कारान कर तुम्हारा से संस्कार कर दीजिए, संस्कार कीजिए। संस्कार देखिए, संस्कार बहुत होता है, गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और अंत में अंत्येष्टि संस्कार। यहाँ पर दर्गाचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, आप संस्कारण कर्तुम अर्हति, आप इन दोनों बालकों को संस्कार कर दीजिए। संस्कार मतलब क्या करना है कि नामकरण कर दीजिए, नाम रख दीजिए, आप इन दोनों बालकों का नामकरण कीजिए। बालय हो अनयो नृणाम, बालय हो द्विवचन बोल रहे हैं, बालक का रूप खिलाएंगे तो बालक 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 बालकम बालक बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकई बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो हो बालका नाम बालके बालकयो बालकेषु। तो षष्ठी के द्विवचन में बालयो हो, जैसे बालकयो तो बालयो हो, बालयो शब्द कह करके कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरण कराना चाहते हैं। यदि केवल एक बालक, अगर एक को कराना होता तो एक वचन का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं, करें कि बालयो अनयो नृणाम जन्मना ब्राह्मण और गुरु, करें कि इन बालकों का नाम संस्कार कर दीजिए। तो मान लीजिए कि दर्गाचार्य यहाँ कहें कि मैं क्यों नाम संस्कार करूं, मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ नहीं, मैं तो वसुदेव का गुरु हूँ। मान लीजिए इस तरह का प्रश्न करे, मान लीजिए दर्गाचार्य कहे कि ठीक है, मैं योग्य हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ को समझने वाला हूँ, सब कुछ को जानने वाला हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा गुरु नहीं ना हूँ, इसलिए मैं क्यों नामकरण करूँ, मैं तो वसुदेव का गुरु हूँ। अब इतना सुन करके नंद बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, ब्राह्मणों जन्मना गुरु, ब्राह्मण जन्म के गुरु होते हैं और सबके गुरु होते हैं, उनका कोई एक व्यक्ति नहीं होता है कि मैं इन्हीं का नामकरण करूंगा उनका नहीं करूंगा। आप ब्राह्मण हैं, जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु ब्राह्मण होता है, मनुष्य मात्र का, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं। आप योग्य हैं, गुरु हैं, महान हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप कीजिए, आप ही कर दीजिए, आप ही कीजिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होते हैं, एक व्यक्ति का नहीं मनुष्य मात्र का, सबका गुरु होते हैं, आप मनुष्य मात्र के गुरु हैं, इसलिए कृपा करके आप नामकरण कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नामकरण नंद बाबा भी कर सकते थे, नंद बाबा भी जैसे आजकल के लोग नाम रख लेते हैं ना, रखते हैं, कोई रखता है चंटू मंटू टिंकू पिंकू क्या क्या रख देते हैं अपने मन से, लेकिन नहीं, यहाँ ध्यान देना है, नाम अगर रखवाना है तो आचार्यों से रखवाना चाहिए, गुरुजनों से नाम रखवाना चाहिए, ये नहीं कि अपने मन से जो मन में आ जाए वही नाम रख लीजिए। जैसे धुंधली रखी थी, धुंधली रखी थी, आत्मदेव पंडित का लड़का हुआ था, बालक हुआ, वास्तव में उनका पुत्र नहीं था, ये सब महात्मा की कथा है, लेकिन जैसे तैसे पुत्र हुआ, उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो हुआ क्या कि जब बालक हुआ तो आत्मदेव पंडित बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, अब वो नाम करना चाहे तो धुंधली कहती है कि देखिए जी, नाम तो मैं रखूंगी, मैं क्यों इसलिए रखूंगी कि मेरा नाम, हमारा नाम धुंधली है, तो मैं चाहती हूँ कि इसका नाम धुंधकारी हो। अच्छा ठीक है, रखो धुंधकारी तो फिर तुम्हारा पता चलेगा। और वो खूब पिटता था, बहुत कष्ट दिया, वो सब कथा है। तो नामकरण आचार्यों से कराना चाहिए, गुरुजनों से करवाना चाहिए, अपने मन से नहीं, अपने मन से नाम नहीं करना चाहिए। अगर नाम रखवाना है, बच्चों का नाम करना है, तो गुरुजनों के द्वारा रखा जाना चाहिए, संस्कारण कर तुम रहते, संस्कार कराना चाहिए नामकरण, लेकिन आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा। संत महात्मा जब नाम रखते हैं तो वह कल्याण करता है। जैसे अजामिल के पुत्र का नाम नारायण महात्मा लोग बताए कि बेटी इसका नाम तुम नारायण रख देना। देखिए संत महात्मा आशीर्वाद स्वरूप नारायण शब्द कह करके चले गए और वही नारायण अजामिल का कल्याण किया। तो संत महात्माओं के द्वारा दिए हुए नाम का बहुत महत्व होता है, गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ नाम महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आचार्यों के द्वारा ही नामकरण होना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी देख रहे हैं कि आज बहुत सुंदर मुहूर्त है, इस तरह कि बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हमारे घर पर आए हुए हैं और हमारे घर दो बच्चे हैं, इन दोनों का नामकरण नहीं हुआ है, तो अवश्य ही आज मैं नामकरण कराऊंगा। तो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारण कर तुम रहसे बालयो अनयो नाम ब्राह्मणो जन्मना गुरु। ब्राह्मण जन्म से गुरु होते हैं, इसलिए हे भगवान आप भूत भविष्य सबको जानने वाले हैं, कृपा करके हमारे इन दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। कहते हैं अरे मैं बिल्कुल नामकरण नहीं करूंगा, आप गर्गाचार्य जी बोलना प्रारंभ करते हैं। अब तक तो नंद बाबा बोल रहे थे, लेकिन अब यहाँ से गर्गाचार्य जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। कहते हैं नहीं नहीं मैं नामकरण नहीं करूंगा। तो क्यों? यदो नाम अहम आचार्य ख्यात भुवि सर्वत सुतम मया संस्कृतम से मन्यते देवकी सुतम। कह रहे हैं कि हे नंद जी आपको पता है मैं सब जगह यदुवंशियों का गुरु हूँ, आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ, इस बात को सभी लोग जानते हैं। सब जगह यह विख्यात है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। यदि मैं तुम्हारे इस पुत्र का संस्कार करूँगा तो लोग यही समझेंगे कि यह देवकी का पुत्र है। अगर मैं का नामकरण करता हूँ सभी जगह यह विख्यात है, सभी जगह प्रसिद्ध है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। अगर मैं इस बालक का नामकरण करता हूँ, नाम रखता हूँ, तो लोग यही समझेंगे कि यह अवश्य ही देवकी का पुत्र है, इसलिए मैं नामकरण नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि हमको सभी लोग जानते हैं मैं बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, मैं विख्यात व्यक्ति हूँ, मुझे सब जानते हैं। और उसमें भी जो कंस है, कंस के विषय में पता है आपको, कंस जो है कंस पाप मति ही, वो तो उसका बुद्धि ही पापमय है, जो उसका बुद्धि है वह पापमय है। कंस पाप मति सक्षम तव चानक दुंदभे, आनक दुंदभे तव सक्षम। आनक दुंदभी जो है, आनक दुंदभी वसुदेव जी को कहते हैं, क्योंकि उनका जन्म हुआ था तो उस समय देवता लोग नगाड़े बजाए थे, ढोल आदि बजाए थे, इसलिए बजाए थे कि इसी बालक का पुत्र भगवान बन करके आएंगे, इसलिए देवता लोग खुशी में होकर के ढोल नगाड़े बजाए थे। तो वसुदेव का नाम एक पड़ा था आनक दुंदभी। यहाँ पर गर्गाचार्य जी कह रहे हैं यह कंस को पता है कि आनक दुंदभे तव सख्यम, तव मतलब आपके, हे नंद जी आपके सख्यम मतलब मित्र हैं। कौन? वसुदेव जी। वसुदेव जी और नंद जी दोनों मित्र भी हैं, भाई भी हैं, सखा भी हैं। इस बात को कंस जानता है, कंस को यह बात पता है। तो कह रहे हैं कि वह यह जानता है कि आनक दुंदभी वसुदेव और नंद दोनों मित्र हैं, और देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुम अर्हति, यह भी उसको पता है कि देवकी का जो आठवां संतान है वह लड़की नहीं, वह कन्या नहीं है, वह बालक है। देवक क्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर हती। देवकी का जो आत्मा गर्भ है वह न स्त्री, वह लड़की नहीं है, वह कन्या नहीं है, वह तो बालक है। इस बात को कंस जानता है। अगर कहीं मैं नामकरण किया, मैं कहीं इस बालक का नाम रखा तो वह शंका न कर ले, इस बात से वो माना कर ले, अरे कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल नामकरण नहीं करूंगा, क्योंकि वह शंका कर लेगा तो बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हे नंद जी, मैं बिल्कुल नामकरण नहीं करूंगा। इतना सुनकर कहीं यह समझ लेगा और इस बालक का अगर वध कर देगा तो बहुत गड़बड़ है, ठीक नहीं है। इति संचिंतयन् श्रुत्वा देवक क्या दारिका वचः अपि हन्ता गतः शङ्कः तर्हि तन्नो नयो भवेत्। अगर कहीं शंका कर लिया कि गर्गाचार्य को क्या पड़ा था नाम रखने के लिए, क्यों गर्गाचार्य ने नाम रखा, हो न हो यह वसुदेव का पुत्र है, इस तरह अगर सोच करके कहीं इस बालक का वध कर देगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं रखना चाहता हूँ। क्योंकि कितना स्पष्ट गर्गाचार्य समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि नंद बाबा नामकरण करने के लिए और उतावले हो जाए और कोई ऐसा व्यवस्था करे कि दूसरे को पता नहीं हो। भगवान सब कुछ कहवा रहे हैं, सबके हृदय में भगवान विद्यमान होते हैं, नंद जी के हृदय में भगवान उपस्थित है और प्रेरित करके इस तरह के वचन बुलवा रहे हैं, कहवा रहे हैं। तब नंद जी कहते हैं कि अरे महाराज आप चिंता मत कीजिए, अब बस सोचिए, चिंता मत कीजिए। कह रहे हैं कि देखिए हम लोग एकांत में चलते हैं, अलग शीतोष्मीन रहसी मामय कै रि गोब्र दे गुरु द्विजाति संसार स्वस्ती वाचन पूर्वक। नंद बाबा कह रहे हैं कि हे महाराज, हे आचार्य, आप यहाँ से चुपचाप एकांत में चलिए। एकांत कहाँ है, तो कह रहे हैं कि गोब्र दे, यहाँ पर गायें निवास करती हैं, गोब्रजे। गोब्रज कहते हैं गोशाला को, यहाँ पर गोशाला के लिए कह रहे हैं कि जहाँ गायें निवास करती है। ब्रज का अर्थ होता है जाना, ब्रज गतौ धातु से ब्रज की निष्पत्ति होता है। तो कह रहे हैं कि गो मतलब गाय, ब्रजे मतलब जहाँ पर जा करके रुक जाती है, ठहर जाती है, वहाँ हम लोग चलते हैं। और वहाँ चल करके क्या करेंगे कि आपके द्वारा एकांत में रहसी, एकांत में अलग चितोष्मीन बिल्कुल हम लोग छिप करके नामकरण करेंगे, किसी दूसरे को पता न चले, आप नाम संस्कार कर दीजिए। यहाँ तक कि दूसरे का बात छोड़ दीजिए, अपने जो सगे संबंधी हैं उनको भी पता न चले, इसलिए एकांत में चलिए। और वहाँ चल करके द्विजाति संसारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, स्वस्ति वाचन के साथ में वहाँ द्विजाति संस्कार को कर दीजिए, अब करिए नामकरण संस्कार कर दीजिए। स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन का अर्थ यहाँ पर है कि वहाँ महामंत्र किया जाएगा, भगवान के नाम गाया जाएगा और नाम गाते हुए इन दोनों बालकों का नामकरण किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए वैदिक मंत्र का बहुत महत्व है, वैदिक मंत्रों के द्वारा वहाँ पर संस्कार किया जाएगा। और वैदिक मंत्र क्या है, सभी मंत्रों का मंत्र महामंत्र है, मंत्र का अर्थ होता है जिसको छिपा करके रखा जाए। मंत्र किसको कहते हैं? जिसको छिपाया जाए। मत्री गुप्त संभाषणे धातु से मंत्र की निष्पत्ति होती है, मंत्र बनता है। मत्री गुप्त संभाषण, जिसको गुप्त रखा जाए, जिसको छिपा करके रखा जाए, उसको मंत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ छिपाना भी है और सबको बताना भी है, इसलिए कह रहे हैं कि महामंत्र किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह स्वस्ति वाचन करते हुए भगवान का नामकरण, भगवान के नाम को गाते हुए किया जा रहा है। कह रहे कि आप और हम चलते हैं एकांत में और वहां चल करके नामकरण किया जाए। और इसको मैं अपने सगे संबंधियों को भी नहीं बताऊंगा, औरों का तो बात ही क्या है। चलिए, इतना सुने जब गर्गाचार्य को बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, कहते ठीक है चलो। तब वे दोनों बालकों को लेकर के जाते हैं। यहाँ पर गर्गाचार्य नामकरण तो करना ही चाह रहे हैं, जब नंद बाबा इस प्रकार एकांत की बात कही तो वे कहे कि ठीक है चलते हैं। और वहां जाते हैं गौशाला में। तो गौशाला में जब जाते हैं, यहाँ पर तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं कुछ आचार्यों से सुना हूँ कि जब नामकरण के लिए गए थे तो रोहिणी जी और यशोदा जी, नंद बाबा, गर्गाचार्य जी और दोनों बालक, इतने लोग गौशाला में गए। लेकिन यहाँ पर नहीं बात है। तो वहाँ जब गए हैं तो क्या किए हैं, थोड़ा सा रहस्यमय किया है कि यशोदा जी जो हैं वो रोहिणी के बालक को ली है, बलराम जी को ली है, और रोहिणी माता कृष्ण को ली है। थोड़ा सा वो लोग परीक्षा लेना चाहते हैं गर्गाचार्य जी का, ऐसे इसमें नहीं है। मैं सुना हूँ, एक बहुत सुंदर कथा कह रहे थे तो मैं सुना था, तो वो बता रहे थे कि दोनों यह जानना चाहते हैं कि नंद बाबा बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम ही ब्रह्मदान श्रेष्ठ संस्कारण कर तुम हसी, तुम पर और अवर को जानने वाले हो। तो थोड़ा हम लोग भी परीक्षा लेना चाहते हैं कि वास्तव में यह भूत भविष्य सब जानता है कि इसी तरह। तो यशोदा जी क्या की कि यशोदा जी रोहिणी नंदन को ले ली है अपने गोद में, और माता रोहिणी यशोदा नंदन को ले ली है। दोनों एक दूसरे के बालक अपने गोद में लेकर के जाती है। तो गर्गाचार्य देख करके मुस्कुरा रहे हैं। जब देखे बालकों को तो हंसते हुए गर्गाचार्य नामकरण करना प्रारंभ करते हैं। यशोदा के तरफ देखते हुए कहते हैं गर्गाचार्य, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणी आख्यास्यते रामयति बलाधिक्याद बलं विदुः। कह रहे कि अयम, जिसको यशोदा ली है, अयम अयम ही रोहिणी पुत्र, अयम अयम यह जो बालक है यह रोहिणी पुत्र, रोहिणी नंदन है, रोहिणी कुमार है, यह रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुणी, ये आनंद देने वाला है। रमंती योगिन यस्मिन इति रामः, जिसमें बड़े बड़े योगी लोग रमण करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, ये सबको आनंद देगा, सभी गुणों से आनंद देगा। इसलिए आख्यास्यते राम इति, इसलिए इसको राम के नाम से जाना जाएगा। राम इति, यह राम है, इसका नाम क्या है? राम है, बलराम नहीं, करे राम, राम इति यह राम है। और बलाधिक्याद बलम विदुः, इसके पास अधिक बल होने के कारण, अधिक शक्ति होने के कारण इसका नाम क्या होगा? बल होगा। एक नाम कहते हैं कि राम है और दूसरा कहते हैं बल है, और हम दोनों नाम को हम लोग मिला देते हैं एक साथ तो बलराम कह देते हैं। लेकिन राम अलग है, बल अलग है, बलभद्र राम। तो बल और राम दोनों मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? बलराम। तो कह रहे हैं गर्गाचार्य, इसका का नाम राम होगा और बना भिक्याद बलम वेदो हो, इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, यह असीम बल वाला होगा। इसके इसका एक नाम बल भी है, दूसरा नाम क्या है? बल है। और बल को और राम को एक में मिला देंगे तो क्या हो जाएंगे? बलराम हो जाएंगे। बोलिए बलराम भगवान की। यहाँ बलराम के नाम से प्रसिद्ध होगा यह बालक। और देखिए फिर कहते हैं कि यदुना मृथक भावा शंकर शरण मुसंकित, कह रहे हैं कि यादवों में यदुवंशियों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जो क्षत्रिय और वैश्य, नंद जी जो है वो वैश्य कुल के हैं, उनकी माता वैश्य कुल की थी और वसुदेव जी के माँ जो है वो क्षत्रिय कुल की है। तो कहने कि इस बालक के कारण दोनों एक में हो जाएंगे, इसलिए यदुना मृथक भावा शंकर शरण मुसंकित, कहने की भेदभाव नहीं रखेगा, लोगों में फूट पड़ने पर मेल कराएगा, दोस्ती करा देगा, संबंध करा देगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा, एक दूसरे को मिला देगा, संबंध करा देगा। अगर कुछ मतभेद भी रहेगा तो दोनों को एक में मिलाएगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। राम बाल संकर्षण ये सब नामों से यह प्रसिद्ध होगा। इसके बाद गर्गाचार्य अब फिर भगवान श्याम सुंदर की ओर देखते हुए कहते हैं, जो सावना सलोना बालक है उसके तरफ देखता है, देखकर कहते हैं अरे यह जो सावना सलोना बालक है जो श्याम वर्ण का है, आसन वर्णाश्रयो यस्य जनतो नो युगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णदाम गतः, कह रहे हैं कि और यह जो सावना सलोना सावना सावना बालक है, यह तो प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, प्रत्येक युग में आता है, कभी यह श्वेत वर्ग में आता है, कभी रक्त वर्ग में आता है, कभी पीत वर्ग में आता है, इसके अनेक वर्ण होते हैं। और इदानी इदानी शब्द कह करके कह रहे हैं कि अश्विन युगे, इस युग में, अश्विन का मतलब द्वापरे, द्वापर में नामकरण कर रहे हैं, कह रहे कि इदानी अश्विन युगे द्वापरे युगे कृष्णताम गतः, कृष्णत्व को प्राप्त हुआ है यह बालक, सतयुग में श्वेत वर्ण में आता है और त्रेता में रक्त वर्ण में आता है, कलयुग में पीत वर्ण में आता है और इदानी इस द्वापर में कृष्णत्व को प्राप्त हुआ है, कृष्ण वर्ण में आया है। और जब जब आता है, जिस युग में आता है, उसका भजन करने का पद्धति भी अलग अलग है। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेताया में जतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्, ये युग युग में अलग अलग रूप से आता है। तो देखिए इस समय यह बालक कृष्णत्व को प्राप्त हुआ है, इदानीम कृष्णताम गतः, इस द्वापर में कृष्ण वर्ण में आया है। शुक्लो सतयुग में शुक्ल वर्ण में आता है, रक्त तथा त्रेता युग में रक्त वर्ण में आता है, पीत पीत वर्ण में कलयुग में आता है गौरांग महाप्रभु के रूप में, और इदानीम कृष्णताम गतः, इस द्वापर में कृष्ण रूप में आया हुआ है, सावला रूप इसका है। अब इसका नामकरण मैं कह रहा हूँ, गर्गाचार्य कहते हैं कि सुनिए, कहते हैं कि हे नंद बाबा, प्राक अयम वसुदेवस्य, प्राक पहले अयम यह बालक वसुदेवस्य वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था। प्राक शब्द कह करके गर्गाचार्य कह रहे हैं कि पहले यह बालक वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए इसको वासुदेव कहेंगे। तो मान लिया यहाँ वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, उनके मन में कहीं शंका न हो जाए कि प्राग मतलब वसुदेव के यहाँ कितने पहले, तो यहाँ गर्गाचार्य जी बताते हुए कहते हैं कि पहले प्रात अयम, अयम मतलब यह बालक प्रात पहले वसुदेव से, वसुदेव के यहाँ भी जन्म लिया था। तो कहीं नंद बाबा को शंका न हो जाए कि वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, तो इसको दूर करने के लिए कहें कि तवा आत्मज हे महाराज, तव तो मतलब आपका आत्मज, जो आपका यह पुत्र है, यह जो बालक आपका, यह जो लड़का है, यह पहले वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था। तो तव शब्द जब कह दिए गर्गाचार्य जी कि तवा आत्मज, तो इतना सुनकर के नंद बाबा खुश हो रहे कि अच्छा, यह हमारा बालक पहले मतलब बहुत पहले जन्म लिया था, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 100 दिन पहले वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था। 100 दिन पहले, 3 महीना से 10 दिन और पहले यह बालक वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, और वहीं से उसको वसुदेव जी लेकर के आए और नंद भवन में रखे। लेकिन इसको बताते हुए गर्गाचार्य कह रहे कि तवा आत्मज, यह आपका बालक पहले वसुदेव के यहाँ भी जन्म लिया था। तो इसको सुनकर के नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि चलिए कुछ भी हो, यह बालक मेरे मित्र के यहाँ भी जन्म लिया था, अच्छा है, हमारे मित्र के यहाँ भी जन्म लिया था, इस समय मेरा पुत्र बन करके आया। इस बात को बताते हुए गर्गाचार्य कह रहे हैं इसलिए इसका नाम एक होगा वासुदेव, वसुदेव के यहाँ जन्म लेने के कारण इसका नाम क्या होगा, वासुदेव, वसुदेवस्य अपत्यम कुमान वासुदेव, जो वसुदेव के अपत्य है, अपत्य का अर्थ हुआ पुत्र, जिसका जन्म वसुदेव के यहाँ हुआ है, वसुदेव के द्वारा जिनका जन्म हुआ है, उसको वासुदेव कहते हैं, वासुदेव कृष्ण। यह जो कृष्ण है, यह पहले वसुदेव के यहाँ भी जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। और श्रीमान अभिज्ञा संप्रद्ध थे, देखिए इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग जो इस रहस्य को जान रहे हैं, श्रीमान अभिज्ञा जो इसको जानने वाले हैं, वो इसको क्या कहेंगे, वासुदेव, जो इसको जानते हैं, मतलब गर्गाचार्य करें कि मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि यह बालक पहले वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, और पहले बहुत पहले नहीं, 100 दिन पहले, इसको तो मैं जान रहा हूँ, हमारे जैसे जानने वाले लोग आपके यहाँ भले ही है रह रहा है, लेकिन इसको वासुदेव ही कहेंगे, जानेंगे, पुकारेंगे, इसका एक नाम हो जाएगा वासुदेव। नंद बाबा बताते हुए कहते हैं बहुनी संति नामानी, इसके बहुत नाम है, बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेदनो जनः, कह रहे हैं इसके बहुत नाम होंगे, बहुनी संति नामानी, नामानी बहुनी संति, उनके बहुत से नाम होंगे, रूपाणी च सुतस्यते इनके अनेक अनेक रूप होने के कारण जितने कर्म उसके अनुसार अलग अलग उनका नाम होगा। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए भगवान के चरणों में कहते हैं कि अद्वैत अच्युत मनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौ अनंत, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं इनका नाम अच्युत होगा, अनादि होगा, अनंत होगा, गोविंद माखन चोर, जैसे जैसे यह लीला करेंगे, गुण कर्मान रूपाणी, जैसे जैसे कर्म करेंगे उस प्रकार इनका नाम होता जाएगा। माखन चोरी करेंगे तो माखन चोर नाम पड़ेगा। गोपियों के चित को चुराएंगे, चित्तोर नाम पड़ेगा। गोपियों के साथ में रास करेंगे, रास बिहारी नाम पड़ेगा। गिरिराज को धारण करेंगे, अवधर नाम पड़ेगा। अगर गिरिराज को धारण करेंगे गोवर्धन धारी कहलाएंगे, गिरवर धारी कहलाएंगे। इसलिए इस बात को अहम वेद, अहम वेद, मैं तो जानता हूँ और दूसरे लोग नहीं जानते हैं, अन्य लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो इस बात को समझ रहा हूँ। बहुनी समी नामानी रूपारीत सुतस्य थे गुण कर्मान रूपारी तानी अहम वेदो नो जाना। और लोग नहीं जानते हैं लेकिन अहम वेद मैं इस बात को जानता हूँ। हे पुत्र, हे सुतस्य, आपके जो पुत्र हैं उनके बहुत नाम होंगे। जैसे जैसे लीला करेंगे आगे चल करके इसका बहुत नाम होगा। बहुने सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानि रूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। यानी कि तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम है तथा रूप भी अनेक है। इसके जितने गुण हैं, जितने कर्म, उन सबके अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के जो साधारण प्राणी हैं, साधारण व्यक्ति हैं, वे लोग इसको नहीं जानते हैं। इस बात को बोल रहे हैं इसका नाम माखन चोर, गिरवरधारी, रास बिहारी इत्यादि नाम होंगे। तानी अहम वेद न जाना, मैं तो जानता हूँ लेकिन संसार के लोग और लोग इसको नहीं जानेंगे। इसके बाद फिर बोलते हैं कि देखो ऐसा वह श्रेय आधस्य गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गा यूयम अंजन करिष्य। कह रहे हैं कि ऐसा वह श्रेय आधस्य यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। ऐसा यह बालक परम कल्याण करेगा। गोप गोकुल नंदन बाल बालों का, तुम लोगों का और गौओं का, सभी लोगों को, ब्रजवासियों को आनंद देगा अपने कर्म के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा वो सबको आनंद देगा। ब्राह्मणों का भक्त होगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस बात को प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने टीका में। इस श्लोक का व्याख्या करते हुए तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी महाराज। लिखते हुए कह रहे हैं कि यह जो बालक है नमो ब्रह्मण्य देवाय ये ब्राह्मणों का भक्त होगा। ब्राह्मणों के प्रति सेवा भाव है इसके हृदय में। यदि भगवान है, भगवान श्याम सुंदर ब्राह्मण भक्त है, गायों के भक्त है, गौओं का सेवा करते हैं। और आजकल के लोग गायों को मारते हैं लेकिन भगवान गो भक्त है। आप लोग देखिए वहाँ दृश्य है, बहुत सुंदर चित्रपट है कि भगवान जब गाय चरा करके आते हैं भगवान कभी आगे आगे नहीं चलते हैं क्योंकि गौओं को अपना स्वामी मानते हैं, अपने को सेवक मान रहे हैं। तो सेवक कभी स्वामी से आगे नहीं चलता, ये ध्यान देना चाहिए। भगवान कभी जूता नहीं पहनते हैं गाय चराने के लिए जाते हैं तो, बिल्कुल बिना जूता चप्पल के जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं। मैया यशोदा नंद बाबा कहते थे कृष्ण को कि आप जूता क्यों नहीं पहनते हो, चप्पल पहनो, जूता पहनो। तो कहते नहीं, अगर आपको पहनाना है तो सभी गौओं को ही पहनाइए। जब हमारे स्वामी नहीं पहनेंगे, स्वामी नहीं पहनेंगे, स्वामी नहीं पहनेंगे तो मैं कैसे पहनूंगा, मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगा। और जब गाय चराते हुए भगवान आते हैं गोरज विराज भाल लहल हिबन माल गोरज विराज भाल लहलहि वनमाल आगे गैया पाछे ग्वाल लगावे मृदु तानरी आगे गैया पाछे ग्वाल लगावे मृदु तानरी कैसे धोनी बांसुरी की मधुरा मधुरा तैसे बंका चेतवनी मृत दुमंद मोसु कानरी। देखिए उस दृश्य में गाय जो है गायों को चराते हुए भगवान आ रहे हैं, गाय आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं और सबसे पीछे भगवान चल रहे हैं। बहुओं के फूल से जो ब्रज रज उड़ रहा है वह ब्रज रज भगवान के मुख कमल पर लग गया है। उनसे भगवान का मुख कमल इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि क्या कहा जाए। भगवान अलग से कोई श्रृंगार नहीं किए हुए हैं और भगवान इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि भगवान जब दर्पण में अपने मुख को देखने लगते हैं तो राधा रानी दर्पण को हटाने लगती है, कहती है नहीं नहीं आप दर्पण में अपना मुख मत देखिए, अगर अपने मुख को जब आप देखने लगेंगे तो फिर मेरे तरफ नहीं देखेंगे, आप इतने सुंदर हैं। यन मर्त्य लीलो परिकम सोगम मायावलम दर्शयता गृहीतम विस्मा पदम सोच सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांग। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान के शरीर में जब रत्न जाता है, कोई गहना पहनते हैं, कुछ श्रृंगार किया जाता है तो श्रृंगार करने से भगवान अच्छे नहीं लगते हैं, भगवान के शरीर में श्रृंगार जाकर के अच्छा लगने लगता है। ध्यान दीजिए, हम लोग जब वस्त्र पहनते हैं, हम लोग जब कोई रत्न पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, माला पहनते हैं तो उसको पहनने से अच्छे लगते हैं, अगर इसको न पहने तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन श्याम सुंदर के शरीर में रत्न जा करके वो सुंदर लगने लगता है। यन मर्त लीलौ पैकम सयोगम मायावलम दर्शयता गृहीतम विस्मा पनम स्वच्छे, अपने रूप को जब भगवान देखते हैं तो विस्मित हो जाते हैं, सोचिए अरे मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, भगवान इतनी सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है, भगवान का बहुत सुंदर रूप है, अगर भगवान को कोई एक बार देख ले तो फिर किसी दूसरे को नहीं देखना चाहेगा, लेकिन पहले भगवान के रूप को तो देखे तो सही, देखना चाहिए, मंदिर में आकर के भगवान के रूप का दर्शन करना चाहिए। साक्षात रूप भगवान का यहाँ दिखाई देता है, राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निदाई के रूप में साक्षात हम भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए यह जो बालक है अनेक लीला करेगा, जैसा जैसा लीला करेगा वैसे वैसे इसके नाम होंगे और यह कोई साधारण बालक नहीं है। नंद बाबा आपको पता नहीं है यह गोप गोकुल नंदन है, यह ग्वाल बालों को आनंद देने वाला, गौओं का आनंद देने वाला, सबको सभी लोगों के बड़े बड़े विपत्तियों से पार कराएगा, सुगमता से अंजसा अनायास ही बालक के द्वारा बड़े बड़े संकटों से, बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे, क्योंकि इसकी सहायता से तुम लोगों के पास किसी प्रकार की विपत्ति नहीं रह जाएगी। इस बालक का अगर सहायता करोगे, रक्षा करोगे, इसके साथ में अगर आप लोग रहेंगे तो तुम लोगों का परम कल्याण करने वाला यह बालक है, समस्त गोप और गौओं को आनंदित करेगा, सबको आनंद देने वाला है यह बालक। गर्गाचार्य इस तरह बोल रहे हैं, ऐसा वस्त्र आधत्य गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी एवं अंजस करिष्य था। इस तरह आनंद के साथ में इसके साथ रहने से अनेक प्रकार की विपत्तियों से हम आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ छिपाते हुए गर्गाचार्य करें कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह भगवान है और जो हरि के साथ में रहता है तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अगर कोई हरि के स्मरण करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान का चिंतन करे तो आपका जो संकट है, विपत्ति है, वह दूर हो जाती है। विपत्ति को दूर करने वाला भगवान का स्मरण है। अगर आपके पास कोई संकट आता है तो संकट में आप भगवान का स्मरण कीजिए। हरि स्मृति, हरि का स्मरण करने मात्र से हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सर्व विपद, जितने विपत्ति हैं, संकट है, कष्ट है, वो तुरंत दूर हो जाता है। वो दूर करने वाला क्या है? भगवान का रूप, भगवान का नाम। अगर कोई भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान के रूप का ध्यान करता है, भगवान के स्वरूप को चिंतन करता है, तो उसके पास जो विपत्ति है, जो संकट है, वह तत्क्षण समाप्त हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। यह है रूप की महिमा, यह है भगवान का स्मरण का महिमा। इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। जब कुछ सुनेंगे नहीं तो स्मरण कैसे होगा? नौ प्रकार के भक्ति में सुनना पहला भक्ति है। पहला भक्ति क्या है? सुनना। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम भगवान के विषय में कुछ कह नहीं सकते। जिसको अगर कहने की इच्छा है, बोलने की इच्छा है, तो सबसे पहले हम लोग को सुनना पड़ेगा। श्रवणम प्रथम भक्ति है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। विष्णु सब में लगाइएगा, नौ प्रकार के जो भक्ति है सब में विष्णु लगेगा। श्रवणम किसके विषय में सुनना है? तो विष्णु हो, कृष्ण के विषय में सुनना है। कीर्तनम विष्णु हो, कीर्तन करना है तो कृष्ण का कीर्तन करना है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण करना है तो कृष्ण का करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चरण में सेवा करना है तो कृष्ण का करना है। अर्चनम, अर्चन करना है तो कृष्ण का करना है। वंदनम, वंदन करना है तो कृष्ण का करना है। सख्यम, अगर दोस्ती करना है तो कृष्ण से करना है। आत्मनिवेदनम, अगर अपने आप को देना है तो कृष्ण को देना है। दासता स्वीकार करना है तो कृष्ण का दास, यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं रामदास हूँ, मैं श्याम दास हूँ। आनंद के साथ में अगर कोई पूछता है तो कहना चाहिए कि दासो हम कृष्ण से, मैं दास हूँ तो कृष्ण का हूँ। सेवक बनना चाहिए तो भगवान का बनना चाहिए। हम किसके सेवक हैं, हम किसके दास हैं? तो कृष्ण के दास हैं। भगवान श्याम सुंदर के हम सेवक हैं, दास हैं। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक भगवान के विषय में चिंता नहीं करेंगे तो फिर कैसे समझ सकते हैं? यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान का स्मरण करता है, यह बालक जो है, इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे, आसानी से पार कर जाओगे, इस तरह बोल रहे हैं। फिर कहते हुए कहते हैं कि देखो, यह वर्षा काल से कालिये के प्रभाव से, दवानल से, अनेक असुर आदि का आगमन होगा, उससे आसानी से तुम लोग पार कर जाओगे अगर इसका सेवा करते रहोगे तो। इसको छोड़ना मत, गर्गाचार्य कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए कृष्ण को मत छोड़ना। अगर कोई कृष्ण को छोड़ करके सुखी होना चाहता है तो कभी नहीं हो सकता है। संसार के लोग सब कुछ स्वीकार करते हैं लेकिन कृष्ण को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान को स्वीकार कर लिया उसको फिर और कुछ की जरूरत नहीं है। जिस पर भगवान प्रसन्न है तो फिर उसको किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, वो आनंद में रहता है। ऐसा वस्त्र आधा त्यग गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजह करिष्यत। वह आसानी से सभी प्रकार के संकटों से, सभी प्रकार के दुखों से वह व्यक्ति पार हो जाता है जो भगवान श्याम सुंदर का सहायता करता है, जो भगवान श्याम सुंदर का सेवा करता है, जो भगवान के लिए माला बनाता है, जो भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, जो भगवान के लिए आरती करता है, जो भगवान के लिए व्यवस्था करता है, वह व्यक्ति आसानी से पार कर जाता है। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। यूयम तुम लोग अंधता सदृश अनायास ही पार कर जाओगे, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कल्याण होने वाला है, इससे आप लोगों का भलाई होने वाला है, क्योंकि यह समस्त गौओं को समस्त गोपों को आनंद देने वाला है। यह बात गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसको साधारण बालक आप मत समझिए, क्योंकि यह युग युग में आता है। प्राग अयम वसुदेवस्य, पहले वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा, और बहुत से इसके रूप हैं, बहुत नाम है, जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे वैसे इनका नाम होगा, इस तरह के बात बताओ। इस बात को सुनकर के नंद बाबा मन ही मन बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, अच्छा यह जो मेरा बालक है इसके साथ रहने से, इसका सेवा करने से हम लोग अन्यास संसार से पार हो जाएंगे, अनेक प्रकार के कष्ट से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा, ये तो बहुत बात सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत प्रसन्न है नंद बाबा। और इधर गर्गाचार्य जी इस तरह की बात बता रहे हैं, फिर कहते हैं तो देखिए, पूरा नेना ब्रजपते साधव दस्यु पीड़िता अराजके रक्ष मारा जिज्ञु दस्यु समेधिता। कह रहे हैं कि हे नंद बाबा, हे ब्रजराज, पहले युग की बात है, पूरा अनेन ब्रजपते, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था, इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रह गया था, डाकुओं ने चारों ओर से लूट खसोट मचा रखी थी, तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जनों की रक्षा की थी, इसी बल को पा करके कह रहे हैं कि पूरा नैना ब्रजपते साधो दस्यु पीड़िता अराजके रक्ष मारा जिज्ञु दस्यु समेधिता। इसी बालक के बल पर देवता लोग उस राजा पर विजय प्राप्त किए थे, यह कोई साधारण बालक नहीं है, पूरा मतलब पहले की घटना है, बता रहे हैं कि एक बार पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रह गया था, डाकू लोग जो चोर डकैत होते हैं वो सब लूट करके ले गए थे उस समय, तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की थी, जब देवताओं के ऊपर इंद्र आदि के ऊपर बड़े बड़े जब असुर लोगों का प्रभाव होता है तो इंद्र कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उस समय स्वयं भगवान आकर के रक्षा करते हैं। इसी बात को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि यह जो बालक बड़े बड़े देवताओं के यहाँ जब संकट आता है तो उस समय वे लोग स्वयं भगवान के पास जाते हैं, और जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान स्वयं अवतार लेकर के जन्म लेकर के भगवान श्याम सुंदर अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के उन पुष्टों का संहार करते हैं। इतने चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृदयंती जुगे जुगे। जब इंद्र आदि देवता दुखी होते हैं तो उन लोगों के दुख को दूर करने के लिए स्वयं भगवान इस भरा धाम में आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, और आकर के युग युग में अवतार लेते हैं। जब जब देवताओं के ऊपर जब जब इस पृथ्वी पर संकट आता है, दुख आता है, तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है, भगवान आते हैं और आकर के अपने भक्तों का रक्षा करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को सुखी करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए भगवान आते हैं। देखिए मुख्य प्रयोजन भगवान श्याम सुंदर का असुरों को मारना नहीं होता है, इस धराधाम पर असुर को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं, ध्यान देना है, ये नहीं कि भगवान असुरों को मारने के लिए आते हैं, नहीं, अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान आते हैं, आनंद देने के लिए, और गौर रूप में असुर लोग मारे जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खेती करता है, धान का फसल उपजाता है, तो धान का खेती पुआल और भूसा के लिए नहीं करता है, ध्यान देना है। ये नहीं कि धान का खेती कर रहा है कि हमको पुआल उत्पन्न हो जाए, भूसा मिल जाए, इसके लिए नहीं करता है, वो चावल के लिए करता है, लेकिन अनायास ही वो मिल जाता है। जैसे कोई गाय को अपने घर में रखता है तो गाय को गोबर के लिए और मूत्र के लिए नहीं पालता है, गाय को किस लिए पालता है? दूध के लिए। लेकिन गोबर ये सब गोमूत्र प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही हमारे प्रभु श्याम सुंदर इस जगत में आते हैं भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों के साथ में आकर के आनंद का अनुभव करते हैं, भक्तों के बीच में भगवान आते हैं। लेकिन असुर लोग सामने आते हैं तो उसको भी मार देते हैं। जब देवता लोग कष्ट को प्राप्त करते हैं, दुखी होते हैं, तो उनका वश नहीं चलता है, तब वे सीधे भगवान के शरण में जाते हैं, हरि के शरण में जाते हैं। हरि जगाम शरणम, शरणम हरि जगाम, हरि के शरण में जाते हैं। हरि जगाम शरणम उत्पातागम संकिता, किसी प्रकार का उत्पात न हो इसलिए हरि के शरण में जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति हरि के शरण में जाएगा, जैसे नंद बाबा भी हरि के शरण में गए थे, जब वसुदेव जी बोले कि अरे नंद बाबा आप जल्दी ब्रज में लौट जाइए, उत्पात होने वाला है, क्योंकि वसुदेव जी सब समझ रहे हैं, तो नंद बाबा विचार करने लगे कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सही बोलता है, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोले हैं, इस बात को कंस भी जानता है। नंद बाबा कहते ठीक है, अब तो मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तब वे सीधे हरि के शरण में जा रहे हैं। हरि जगाम शरणम उत्पातागम संकेत, वो सोच रहे हैं कि उत्पात होने वाला है तो उससे रक्षा भगवान ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसी बात को यहाँ गर्गाचार्य कह रहे हैं कि देखो नंद जी, यह आपका बालक एक बार बहुत बड़ा कष्ट आया था तो उस समय यही बालक रक्षा किया था, और यह जैसे जैसे समय आता है उसके अनुसार यह बालक रक्षा करता रहता है। इस बात को श्री प्रभुपाद जी महाराज ने भी अपने तात्पर्य में लिखे हैं कि दस्युः पीड़िताः, जब जब चोर डकैतों का प्रभाव होता है तो उस संकट से बचाने के लिए, उस संकट से बचने के लिए देवता लोग जब भगवान के शरण में जाते हैं तो श्याम सुंदर उस समय फिर अवतार लेते हैं। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर को कहा गया है कि एते चांस कलाप उनका कृष्ण तू भगवान स्वयं, अगर भगवान हैं स्वयं तो कृष्ण ही है, और लोग उनके अंश हो सकते हैं, कुछ उनमें गुण विशेषता हो सकता है, लेकिन परिपूर्ण भगवान तो केवल श्याम सुंदर है, भगवान कृष्ण है। और इंद्रारी व्याकुलम लोके, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, अनेक प्रकार के संकटों से दूर करने के लिए हमारे प्रभु अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और आते हैं। यह बालक आपका एक बार लुटेरों से विजय प्राप्त कराया था, इस तरह कहते हुए आप कह रहे हैं यह तस्मिन महाभागः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवः नारयो भी भवन्तेतान विष्णुं पद्मानि वासुरान तस्मान् नन्दात्मजोयन्ते नारायण समो गुणैः क्रिया कृत्यानुभावेन गोपायस्तु समाहितः। कह रहे हैं कि हे नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से आप देखिए, किसी भी दृष्टि से देखिए, गुण में, सम्मति में, सौंदर्य में, कीर्ति में, प्रभाव में, तुम्हारा बालक का गुण नारायण के समान मिलता है। नारायण सम नारायण के समान है, नारायण सम शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहें कि आप किसी भी दृष्टि से देखिए, यह आपका जो बालक है वह बिल्कुल नारायण के समान है। नारायण सम कहकर के गर्गाचार्य क्या कहना चाहते हैं, इस पर कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी शिव जी नारायण की क्षमता नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा जी नारायण जैसा नहीं कुछ भी कर सकते हैं, शंकर जी नहीं कर सकते हैं। और इस तरह का अगर कोई बात करता है कि ब्रह्मा जी नारायण के समान है, शंकर जी समान है, तो वास्तव में वह पाखंडी है जो इस तरह का बात करता हो कि शंकर जी भगवान के समान है, नारायण के समान है, ब्रह्मा जी नारायण के समान है, शंकर नारायण के समान है, इस तरह का अगर कोई बात कर रहा है तो वह पाखंडी है। तो फिर यहाँ दर्गा क्या जी इस बालक को नारायण सम क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर प्रश्न होता है ना, क्यों कह रहे हैं नारायण सम? नारायण ही नारायण के समान हो सकते हैं, और तो कोई हो नहीं सकता है। तो इस बात को दर्गाचार्य जी बताने के लिए भगवान को, उस बालक को भगवान स्थापित करने के लिए, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं भगवान है, यह कोई साधारण नहीं है, नारायण ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आए हैं, इस बात को बताना चाहते हैं। दर्गाचार्य जी यही बताना चाह रहे हैं कि हे नंद जी, इसको आप साधारण बालक मत समझो, यह नारायण समान, यह नारायण के समान है। अथवा उसको छिपाते हुए यह कहना चाहते हैं कि नारायण स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में आए हैं। तुम इसको भले नहीं समझ रहे हो, लेकिन इस बात को मैं समझ रहा हूँ, इस बात को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, यह बालक नारायण सम है। तस्मान नंदात्मजोयम के हे नंद, हे नंद जी, हे आत्मज, यह जो तुम्हारा बालक है आत्मज, जो आपके द्वारा जिनका जन्म हुआ है, स्वत आत्मज, यह जो आपका पुत्र है, वह नारायण समान पूरे, इसका सब गुण रूप के दृष्टि में देखा जाए तो नारायण से नारायण जैसा है, अगर इसका वीरता देखा जाए तो नारायण जैसा है, अगर इसके कीर्ति को देखा जाए तो नारायण जैसा है, सौंदर्य देखा जाए तो नारायण जैसा है, उसके गुण देखा जाए तो नारायण के समान है, सब कुछ नारायण जैसा है। और बड़ी सावधानी और तत्परता से इसका रक्षा तुम करो, कि आगे चलकर के अब बहुत लीला करने वाला है, तुम लोगों को रक्षा करेगा। भविष्य के विषय में बोल रहे हैं दर्गाचार्य कि तुमको जब अजगर आकर के ग्रसेगा तो उस समय यही बालक तुम्हारा रक्षा करेगा, कोई दूसरा नहीं करने वाला है, इसलिए इसको रक्षा करना, इसको सुरक्षित रखना, बचाना, यह कहना चाहते हैं। कंस बहुत असुरों को भेजेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, ये सबसे रक्षा करना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम पिता हो, पिता का काम है पुत्र का रक्षा करना। जो पालता है, जो रक्षा करता है, वही तो पिता है। आप पिता है ना इनके, तो पिताजी हैं, तो यह ध्यान दीजिएगा, यह आपका बालक जो है नारायण के समान है, आगे चल करके बहुत काम करने वाला है, इस तरह से बात बता रहे हैं। और फिर अंत में कहते हैं तो देखो, इत्यात्मानम समाधिश्च गर्गे च स्वगृहं गते नन्दः प्रमोदितो मेने आत्मानम पूर्णमाशिषाम। इस प्रकार नंद बाबा को सम्यक प्रकार से समझा करके, बता करके, भली भांति से समझाते हुए और उनको आदेश दिए। गुरु का काम है शिष्य को आदेश देना। दर्गाचार्य जी नंद बाबा को कहे कि तुम इसका पालन करना, रक्षा करना, अपने देख रेख में रखना, कहीं असावधानी मत कर देना, इस तरह रक्षा करना, आदेश देकर के। दो प्रकार का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। जो गुरु होते हैं वो आज्ञा देते हैं और विधि लिंग में प्रार्थना किया जाता है, मैं इस काम को करूं, आपको यह काम करना चाहिए, लेकिन लोट लकार में कहा जाता है कि आप इसको करो, तव पठ, तुम पढ़ो, गच्छ, जाओ। यहाँ कह रहे हैं कि आप इसका गोपाय स्व समाहित, इसका रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझा करके, आदेश दे करके, गर्गाचार्य जी अब स्व आश्रम स्वगृहम गते, स्व स्व अपने घर के लिए गते, चल गए, लौट गए, अपने आश्रम के लिए लौट गए। यहाँ नंद बाबा उनको दक्षिणा नहीं दिए थे और वो लिए भी नहीं। अगर उसको ले करके गए होते, कोई नामकरण करता है तो उसको इनाम मिलता है, दक्षिणा मिलता है, लेकिन दर्गाचार्य वो सब नहीं लिए न दिए, क्योंकि एकांत में नामकरण किया गया है, कहीं कंस को पता न चल जाए। तो स्व आश्रमम दर्गाचार्य अपने आश्रम के लिए लौट गए और उस दर्गाचार्य के वचन को सुन करके, बात को सुन करके नंद प्रमोदितः, नंद जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, बहुत आनंद में हुए। और आनंद में होकर के उन्होंने ऐसा समझा कि मेरे जन्म जन्मांतर का सभी प्रकार के जो लालसा है, जो कामना है, जो चाह है, जो इच्छा है, वह आज मुझे पूर्ण हो गई है, आज मुझे प्राप्त हो गया है। और वे अपने को आत्मानम पूर्ण मासिकम, अपने को पूर्ण मान रहे हैं, अब मुझको सब कुछ मिल चुका है और मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो अपने को कृत कृत्य मान रहे हैं, अपने को धन्य धन्य मान रहे हैं, मन में आज मुझे सब कुछ मिल गया। क्योंकि दर्गाचार्य जी बोले थे कि यह बालक में नारायण के समान सब गुण विद्यमान है। तो इस तरह के वचन अगर कोई पिता सुने तो क्यों नहीं प्रसन्न होगा। नंद बाबा बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, आज वे मान रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ प्राप्त है और मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है। और वास्तव में नंद बाबा के पास सब कुछ है, जिसके पास में भगवान है तो उनके पास में किस वस्तु की कमी है। तो इस तरह नंद बाबा को कह करके, समझा करके, नामकरण करके दर्गाचार्य जी अपने घर के लिए गए और नंद बाबा अपने घर में भगवान श्याम सुंदर के विषय में अब सोच रहे हैं कि इसका पालन कैसे करना है, कैसे इसकी रक्षा करनी है। और आनंद का अनुभव करते हुए यहाँ पर विद्यमान है नंद बाबा। आज मैं यहीं तक कथा को विराम देता हूँ। कल हम लोग माखन चोरी लीला को प्रस्तुत करेंगे, जितना हो सकता है मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। जय श्री प्रभुपाद, हरे
हमारे वृंदावन वाले तो उनके लिए वो दास है। एक प्रचलित बात है, जाने दिनों में कोई परिस्थिति दिन परिस्थिति हो नहीं पड़ती, लोग बहुत कम आ रहे हैं, श्रोता कम आ रहे हैं, इसलिए परिचय देना जरूरी है।